दिन भर मंगलवार 25 अगस्त मैं हूं रेहान फदल। चीन में शेयर बाजार की नाटकीय गिरावट को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में कमी की।
The most important bit here is the very big slowdown in the economy rather than the fall in the equity price.
नजर दौड़ाएंगे भारतीय खान पान में प्याज की महिमा पर और देखेंगे किस तरह बीतती है जिंदगी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में।
सर ये इंडिया आर्मी का जो है ना गोला है, जिस वक्त जी चाहे इंडिया आर्मी जो है ना गोलाबारी शुरू कर देती है, गोलाबारी की वजह से हमारे बच्चे स्कूल जो है नहीं जा सकते, काफी अरसे से जो है स्कूल बंद है, घरों में जो है पढ़ाई वगैरह करते हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। चीन के शेयर बाजार में जारी भारी गिरावट के बावजूद मंगलवार को यानी आज दुनिया के कई बाजारों में मिली जुली तस्वीर देखने को मिली। लंदन और यूरोप के शेयर बाजारों में दोपहर तक थोड़ी तेजी देखी गई, वहीं चीन के शेयर बाजार में करीब 7% की गिरावट आज भी देखी गई। चीन के सेंट्रल बैंक ने फिर से कर्ज की दरों में कटौती की है। वहीं भारत में सेंसेक्स कल के मुकाबले थोड़ा संभलते हुए 290 अंक बढ़कर 26,032 अंकों पर हुआ। कुछ अनुमानों के मुताबिक दुनिया के कई शेयर बाजारों में कल की जबरदस्त गिरावट से करीब 500 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। स्पेन और मोरक्को ने एक संयुक्त अभियान में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि कथित तौर पर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट में लोगों की भर्तियां करवाते थे। इनमें से ज्यादातर को मोरक्को में हिरासत में लिया गया है। वहीं एक संदिग्ध को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में गिरफ्तार किया गया। स्पेन के आंतरिक मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस डियाज ने कहा कि स्पेन में चौथे स्तर का सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है और चरमपंथी हमलों की आशंका को देखते हुए ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
ये
एक नेटवर्क है जो जिहादियों की भर्ती करता है और इस्लामिक स्टेट के साथ लड़ने के लिए इराक और सीरिया भेजता है। ये थे स्पेन के आंतरिक मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस डियाज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में पटेल समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर एक रैली की। इसमें करीब 3,00,000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करने वाले 22 साल के हार्दिक पटेल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पटेल समुदाय को उनका अधिकार नहीं मिला तो वो भगत सिंह के रास्ते पर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अगले विधानसभा चुनाव में कमल नहीं खेलेगा। रूस की एक अदालत ने यूक्रेन के एक फिल्मकार को चरमपंथी गतिविधि की साजिश करने के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई है। रूस के रोस्तोव ऑन डॉन शहर में सैन्य अदालत में बताया गया था कि यूक्रेन के ओल्गेव सेंसोव ने क्रीमिया में लेनिन के स्मारक को उड़ाने की योजना बनाई थी और रूस समर्थित गुटों के दफ्तरों को जलाया था। सेंसोव क्रीमिया को लेकर रूस के रवैये की खुलेआम आलोचना करते रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में 8 पुलिस अधिकारियों को मोजाम्बिक के एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में दोषी पाया गया है। ये घटना 2013 में जोहानिसबर्ग की है जब मोजाम्बिक के एक टैक्सी ड्राइवर को पुलिस वैन से घसीटा गया था और एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया था। अदालत में जज ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस ये नहीं समझ सकती थी कि पुलिस वैन से हथकड़ी से बंधे इस टैक्सी ड्राइवर को घसीटे जाने से उसकी मौत हो सकती है। सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने एक प्राचीन मंदिर को तोड़े जाने का वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। सोमवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज किए जाने के बाद मंगलवार को यानी आज इसका मिला जुला असर देखा गया। चीन के शंघाई सूचकांक और जापान के निकी सूचकांक में दूसरे दिन भी गिरावट जारी रही, जबकि भारत और यूरोप के शेयर बाजार सुधार के साथ बंद हुए। चीन के केंद्रीय बैंक ने शेयर बाजार में गिरावट को रोकने के लिए एक बार फिर ब्याज दरों में कमी की है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं संदीप राय।
चीन में आर्थिक मंदी की आशंकाओं के चलते आज दूसरे दिन मंगलवार को भी एशियाई शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। शंघाई सूचकांक 7.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। सोमवार को इसमें 8.5% की गिरावट दर्ज की गई, जो कि साल 2007 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री रहे केन रेगॉफ का कहना है कि चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण बाजार में एक किस्म का डर फैल गया है।
The big change is that the market had been
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बाजार सोचता रहा था कि चीन की विकास दर हमेशा बनी रहने वाली है, यह अनंत काल तक चलने वाली मशीन है, इसमें कोई सामान्य मंदी नहीं आती है। लेकिन वही लोग अब सोच रहे हैं कि इसमें तो सुस्ती आ रही है, हो सकता है कि इससे वित्तीय संकट खड़ा हो जाए। इसकी संभावना भी बढ़ रही है और इससे घबराहट भी पैदा हो रही है।
केन रेगोफ के शब्द। सोमवार को जापान का निकी सूचकांक भी 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक मंगलवार को भारत का BSE सूचकांक 290 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। सोमवार को इसमें 2009 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय शेयर बाजारों में भी वृद्धि देखी गई है। लिस्बन, मैड्रिड और मिलान में 3% और मास्को में सूचकांकों में 2% का उछाल दिखा। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण दुनिया भर के शेयर बाजारों में उथल पुथल का माहौल है। पिछले 30 साल से चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और कच्चे माल की भारी मांग थी। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत मिलने से दुनिया भर के निवेशक चिंतित हैं। 2 हफ्ते पहले ही चीन के केंद्रीय बैंक ने देश की मुद्रा युआन का लगातार 3 बार अवमूल्यन किया था। निवेशकों में घबराहट फैलने का यह भी एक बड़ा कारण है। शेयर बाजार में तेज गिरावट को थामने के लिए चीन के केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को ब्याज दरों में कटौती करने के साथ नकदी अनुपात में भी कमी की घोषणा की है। फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख लॉर्ड टर्नर का मानना है कि चीनी अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर होने वाला है। शेयरों की कीमतों में गिरावट से ज्यादा अहम बात अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी सुस्ती का आना है। मैं समझता हूं कि ब्याज दरों में और कटौती होगी। फेडरल रिजर्व के फैसले पर यह सबसे बड़ा असर होगा। ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना काफी कम है। मुझे लगता है कि यह उस स्तर तक पहुंचेगा जहां बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों को निर्धारित कर रखा है। आने वाले दिनों में पूर्वी एशिया के सभी देशों में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिलेगी। ये थे लॉर्ड टर्नर के शब्द। एक अनुमान के मुताबिक सोमवार को भारत में शेयर मार्केट में आई गिरावट से निवेशकों को 7 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचा।
चीन में एक बार फिर ब्याज दर में कमी। गुजरात में राजनीतिक रूप से मजबूत पटेल समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने की मांग के समर्थन में आज अहमदाबाद में एक बड़ी रैली हुई। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की विशाल क्रांति रैली को संबोधित करते हुए इसके मुख्य संयोजक हार्दिक पटेल ने उनका हक मिलने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की और इसके लिए कानून और संविधान में बदलाव तक का आह्वान किया। रैली में मौजूद हमारे साथी अंकुर जैन ने वहां कुछ लोगों से बात की।
आप कौन हैं, किस लिए यहां पे आए और इस आंदोलन के साथ क्यों जुड़े?
मेरा नाम परेश पटेल है और मैं घाटलोडिया से आया हूं, अहमदाबाद। और मैं इस आंदोलन के साथ जुड़ा हूं क्योंकि अनामत चाहिए हमको। जो OBC वाले लोग होते हैं उनको अनामत मिलती है क्योंकि उसको 60% होते फिर भी वो जॉब पे लग जाते हैं। हमें 80% होने के बावजूद भी हम जॉब पर नहीं लग सकते।
आप क्यों जुड़े?
हमारे लड़के को 94% होता है तो भी MBBS में एडमिशन नहीं मिलता। आरक्षण वाले को 60 से कम होता है तो भी मिलता है, नौकरी में भी नहीं मिलता है। और नौकरी मिलती है तो मंडल पंच से वो हमारा साहब बन जाता है, हम वह से वह रहते हैं।
आरक्षण नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे?
आरक्षण नहीं मिलेगा तो भगत सिंह के मार्ग से भी हम लोग काम करेंगे।
क्या करेंगे आप?
जो अंग्रेज वक्त जो हुआ था ऐसा होगा, गुजरात बढ़ के बढ़ेगा।
मेरा नाम जयेश पटेल है, मैं लाठीदड़ तालुका बोटाद वहाँ से आया हूँ। हम इसीलिए जुड़े हैं जो परेश भाई ने बताया है। हमारे में मेरे भाई को 90% था फिर भी वो खेत में लगे हुए हैं और 50% वाले भी जॉब पे लग गए हैं, तो इसीलिए हम इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं।
आज जब भारत के कई लोग ये मान रहे हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसमें आप लोग ये डिमांड लेके आए कि नहीं आरक्षण हमें मिलना चाहिए?
नहीं, हमें नहीं मिलेगा तो हम कुछ को भी नहीं मिलने देंगे, तो सभी एक ही हो जाएंगे। हमको नहीं मिलेगा तो कोई किसी को नहीं मिलेगा।
मेरा ये मानना है कि आरक्षण वारक्षण कुछ नहीं होना चाहिए, सब लोग इक्वली होना चाहिए।
डिमांड है कि हमें आरक्षण दो?
हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तो सबका भी कैंसिल हो जाएगा।
पर क्यों चाहिए? आपके पर्सनल जीवन में क्या बदल जाएगा?
हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको तो फर्क पड़ेगा ना।
50% वाले लोग जॉब कर रहे हैं तो हमारे पटेल लोग भी
90% आने के बाद भी नहीं जॉब कर रहे, इसलिए हमको ये चाहिए अनामत।
आपका पर्सनली किसी की लाइफ में क्या बदलेगा? आपकी लाइफ में कुछ पर्सनली बदलेगा?
बाद में हम भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो हमको भी जॉब मिलने का चांस है, इसलिए
मेरी लाइफ में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उस लाइफ में चेंज होगा। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको कोई फंड नहीं प्रोवाइड करती है सरकार, तो हमें भी प्रोवाइड करे जो अनामत मिल जाएगी, तो मेरा मानना ऐसा है।
रैली में मौजूद लोगों की आवाज, आइए सीधे चलते हैं अहमदाबाद अंकुर जैन के पास। अंकुर बताएं कैसी रही आज की रैली?
बिल्कुल, जो बड़ी तादाद में लोग आज अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे, करीबन 4 से 5 लाख लोग इस पूरे मुहिम में जुड़े थे अहमदाबाद में, और सभी लोग आए थे कि यहाँ से इस मैदान में मिलकर ये लोग अहमदाबाद कलेक्टर में के पास एक रैली लेकर जाएंगे, एक विशाल रैली लेकर, जिसमें अनुमान जो इनका कहना था कि करीबन 10 से 15 लाख लोग होंगे, लेकिन खैर उतने लोग नहीं जुड़ पाए और कई सारे मतभेदों के, उस पूरी गैदरिंग के दौरान कई सारे मतभेद थे इंटरनल कुछ डिस्प्यूट के कारण, जो पूरा आंदोलन था वो समेट सा गया आज। और जो आंदोलन था, जो आने वाले दिनों में इनका दावा था कि आंदोलन ये और ज्यादा आक्रामक बनाएंगे, आंदोलन लेकर दिल्ली जाएंगे, लेकिन अब ये लग रहा है कि इन्होंने सीधी चुनौती दे दी गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को, कहा कि जब तक अब वो नहीं आएगी, और आंदोलन के जो मेन कन्वेनर है हार्दिक पटेल वो पास पे उतरे हुए हैं, और कहा है कि अगर आनंदीबेन पटेल अगले 48 घंटे में नहीं आती तो ये आमरण अनशन पे उतरे हुए हैं। और हाल ही में अभी शाम में मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि वो इस डिमांड को नहीं मानेगी और वो अगले 48 घंटे में या इस तरह की किसी भी डिमांड के लिए इनसे मिलने नहीं जाएगी। तो अब लग रहा है कि आंदोलन थोड़ा सिमट सा गया है, लेकिन लाखों की तादाद में पूरे गुजरात से लोग आज अहमदाबाद में आए थे जरूर, और इसी के साथ आए थे कि ये लोग कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे और इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। लेकिन आंदोलन में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई, जहां जो मेन कन्वीनर है उन्होंने जहां नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी, वहीं नीतीश कुमार को अपना दोस्त बताया और अरविंद केजरीवाल को अपनी प्रेरणा बताई, अन्ना हजारे टाइप आंदोलन की बात की, तो जहां टोपियों के साथ उन्होंने कहा कि जो आंदोलन है ये पूरा अरविंद केजरीवाल स्टाइल में हुआ था यहाँ पे, और उसी स्टाइल में हमने लोगों को गांव गांव घर जाके इकट्ठा किया और फौज के साथ जोड़ा। लेकिन लगता है आने वाले दिनों में शायद जो गुजरात सरकार की नींद हराम हो गई थी इस आंदोलन के दौरान, उसने आज शायद चैन की सांस ली होगी। लेकिन आंदोलन के तुरंत बाद कुछ ऐसे वारदात भी हुए जब पूरे शहर में कई दुकानों में तोड़फोड़ के वारदात हुए, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, टीयर गैस छोड़े गए। स्थिति अभी कंट्रोल में लग रही है, लेकिन हाल में हार्दिक पटेल अभी भी जो जीएमडीसी ग्राउंड है वहां पे उपवास पे उतरे हुए हैं, जहां सुबह करीबन 5 लाख लोग थे, लेकिन हाल करीब 5,000 लोग अभी भी उनके साथ हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन क्या रुख लेता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकुर जैन। भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु नगर निगम पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। 198 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटों पर कब्जा किया, वहीं कांग्रेस को 76, जेडीएस को 14 और अन्य को 8 सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जीत पर खुशी प्रकट की है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी ने ये रिपोर्ट भेजी है।
कांग्रेस पार्टी को बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के इन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। पिछले 2.5 साल से कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके या BBMP पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की यह हार उस समय हुई है जबकि पिछले दौर में बेंगलुरु एक गार्डन सिटी से बदलकर कचरे का शहर बन गया है। हमने यह सवाल कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से पूछा कि हार का कारण क्या है। उनका कहना था,
आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ रिजल्ट।
हमें इस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं थी, हमें 100 सीटों की उम्मीद थी, लेकिन बेंगलुरु के लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। हम बेंगलुरु के विकास के लिए काम करते रहेंगे। ये चुनाव हमारी सरकार पर रेफरेंडम नहीं था। मुझे नहीं लगता है हमें इस्तीफा देने की जरूरत है। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। दूसरी तरफ बीजेपी के राज्य अध्यक्ष प्रहलाद जोशी कहते हैं कि इन नतीजों ने यह तय कर दिया है कि कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं है।
ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, संगठित प्रयत्न है। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है बेंगलुरु में और कर्नाटक में, और कांग्रेस का जो BBMP का डिवाइड करने का और ट्राइफर्केशन करने का जो सोच रहा था वो, और जो दुर्लक्ष किया बेंगलुरु को सिद्धरामैया जी ने, ये भी हमको एक कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है हमारा रिजल्ट हमारे तरफ होने के लिए, ये भी एक फेवरेबल इश्यू है।
बीजेपी कोई भी कारण दे, एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेंगलुरु में अच्छा नहीं था। इलेक्शन के 4 महीनों से मुख्यमंत्री शहर के विकास कार्यों पर ध्यान देना शुरू किए थे, जबकि लोगों की शिकायतें बढ़ती ही गईं। कांग्रेस के भीतर इस हार को लेकर निराशा तो दिखाई देने लगी। अभी सवाल इतना ही है कि कांग्रेस पार्टी में कब सिद्धरामैया को हटाने का नारा लगेगा। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। हिंदुस्तान की राजनीति के चुनावी गणित में ये समीकरण अरसे से असरदार तरीके से बार बार प्रमाणित होता रहा है कि जब जब प्याज के दाम चढ़ते हैं, सरकारों के गिरने का खतरा बढ़ता जाता है। दिक्कत कुछ ऐसी है कि इससे लोग ये नतीजा निकालने की उतावली नादानी भी करने में जुट जाते हैं कि प्याज आम आदमी की रोजमर्रा की खुराक का अभिन्न अंग है, रोटी दाल चावल की तरह जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर पुष्पेश पंत आए, हमने उनसे पूछा कि भारतीय पाक शैली में प्याज का क्या महत्व है आपकी नजर में।
जहां तक मेरी जानकारी है, प्याज की कोई खास अहमियत भारतीय खान पान में कभी नहीं रही। 2,500 साल पहले भी अगर आप लौटे, कम से कम 1500-1600 तो मतलब आप कह सकते हैं पूरे यकीन के साथ कि भाव प्रकाश निघंटु नाम का जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख पलांडु नाम से मिलता है, यानी कंद एक तरह का था। और अगर आप महाराष्ट्र में जाएं तो कांदा आज भी से कहा जाता है, जो उसी का अपभ्रंश है। मगर प्याज शुमार होता था तामसिक खानों में, जो राक्षसी खाना एक तरह से था, जो मन में विकार पैदा करता था, गुस्सा कामोत्तेजना इस तरह की चीज़ें। तो ब्रह्मचारी से नहीं खाता था, वानप्रस्थ वाला नहीं खाता था, सन्यासी तो लाहौल विलाकुबत बिल्कुल नहीं खाता था, वैश्य नहीं खाता था, ब्राह्मण नहीं खाता था, जैन नहीं खाते थे। तो हुजूर इसे आखिर खाता कौन था? अगर हिंदुस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा प्याज नहीं खाता था तो इसकी अहमियत क्या थी? अब एक मुहावरा है, नया नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, जो पॉलिटिकली बड़ा इनकरेक्ट स्टेटमेंट आज के ज़माने में सेकुलरिज्म के दौर में है। मगर इससे पता चलता है कि शायद दक्षिण एशिया में मुसलमानों के आने के साथ प्याज का चलन बढ़ा, जो शासक वर्ग था वो प्याज खाता था और लोग उसके साथ जुड़ने के लिए प्याज खाते थे। तो ये मुझे लगता है एक इशारा करता है। नाम है वो लोगों के ज़माने में मुल्ला दो प्याज़ा, तो वो दो गांठ प्याज की खाते थे या दो प्याज़ा उन्होंने ईजाद किया था, या दो तरह का प्याज उस सालन या कोरमे या कलिए में पड़ता था। तो ये चीज़ें किससे कहानियों की हैं।
लेकिन आम लोग से किस तरह से जुड़ी प्याज, क्योंकि आप अगर देखें 1980 अगर मैं याद दिलाऊं आपको, जो जनता पार्टी की सरकार थी, इंदिरा गांधी वापस आई सिर्फ प्याज के मुद्दे पर।
जी, मगर देखिए 1980 का जो जिक्र आपने किया तो एक हूक सी दिल में उठी कि हाय हाय, तब से अब तक 35 साल का वक्फा एक समय का गुजर चुका है। तो उस समय जो प्याज था वो आज का प्याज नहीं था, सोने चांदी हीरे मोती वाला। और अगर उससे भी पहले मैं याद करूं कि जब 1965 में मैं पढ़ने दिल्ली में आया, जो आधा सदी पुरानी बात है, तो तब प्याज खाने के साथ इफरात से मिलता था, दाल भी मुफ्त में मिलती थी। मगर भाईजान जो मुझे एतराज़ है वो ये है कि इस वक्त जो प्याज को लेके बहस इतनी गर्मा रही है, किसी को ये क्यों नहीं याद आ रहा कि अरहर की दाल 150 रुपये किलो पे पहुंच गई है? किसी को ये दर्द या तकलीफ क्यों नहीं है कि कच्ची घानी का सरसों का तेल 100 रुपये किलो पार कर चुका है? ये चीज़ें प्याज से कहीं ज़्यादा अहमियत भारतीय खान पान में रखती हैं। अब रहा प्याज, तो ये तो वो वाहियात चीज़ है जो ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना फैट है, ना विटामिन है, ना रफेज है, ना सॉल्ट है, ना शुगर है। तो हुजूर अनवर, इसमें थोड़े मिनरल ट्रेसेस हैं फास्फोरस और सल्फर के, तो उसको लेके हम ये कहें कि एसेंशियल कमोडिटी है, आम आदमी की जिंदगी इसके बिना गुजर नहीं हो सकती, तो लानत भेजिए प्याज पे। प्याज तड़के के काम आता है, चटनी में पिसता है, मसाले का बेस है।
लेकिन आप नोट करेंगे कि हर साल करीब करीब इसी दौरान प्याज एकदम से गायब हो जाता है।
देखिए, मुझे लगता है कि जब मानसून आता है तो ये बहाना आसान होता है कि मानसून की वजह से या उसकी तुनक मिजाजी की वजह से पूरी प्याज की फसल बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, कभी प्याज में कीड़ा लग गया। मगर अगर आप प्याज देखें तो वो खेती की पैदावार है जो बड़ी हार्डी और इंड्योरिंग है। आप प्याज को रख सकते हैं बिना कोल्ड स्टोरेज के, कभी कभार उसमें बीज निकल आएगा, सड़ता वो बड़ा कम है, जब तक कि आप उसको नमी वाली जगह में न रख दें, सुखा के तब भी काम ला सकते हैं। तो मुझे लगता है प्याज के बारे में, देखिए मुझे लगता है एक बड़ा मुझे पुरानी कहावत और याद आती है कि प्याज बड़ा सगा होता है अपने का, जो उसे काटता है उसको रुला देता है। अब तो बिना काटे प्याज सबको रुला रहा है, तो ये पराए पराया है। मुझे लगता है कि हम लोगों के दिमाग में कई गलतफहमियां प्याज को लेके हैं। न ये दूध है, न ये घी है, न ये तेल है, नून तेल लकड़ी है। हमने एक साजिश साजिश के तहत ये कबूल कर लिया है कि एक अहम चीज़ है और बड़े बड़े हित जुड़े हैं। भारत के कृषि और खाद्य मंत्री थे जो उस इलाके से आते थे जहाँ बड़े पैमाने पर नासिक में प्याज की पैदावार होती है। एक तरफ से तो हम सीना ठोंक के ये कहें कि हम दुनिया में प्याज के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, 10 स्टेट्स में प्याज पैदा होता है और फिर प्याज की कंगाली है, तो मुझे लगता है पेशगी आप इम्पोर्ट का ऐलान करके इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ाते हैं, होर्डिंग करके डोमेस्टिक मार्केट में दाम बढ़ाते हैं।
डॉक्टर पुष्पेश पंत। खबरें आ रही हैं कि नेपाल में कल हुई हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता प्रकट की है और इस संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से बात की है। कल नेपाल के कैलाली जिले में हुई हिंसा में 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। मैंने बीबीसी नेपाली सेवा के महेश आचार्य से बात कर मोदी द्वारा कोइराला को किए गए फोन के बारे में और जानकारी मांगी।
ये बात इस घड़ी में हुई है कि कल उस घटना को लेकर नेपाल के गृह मंत्री बामदेव गौतम ने संसद में ये कहा था कि जो घुसपैठ हो सकता है संभावित उस घटना में, उसमें दक्षिण से आए लोग हो सकते हैं। दक्षिण का मतलब क्या होता है कि नेपाल के दक्षिण में भारत है, इसलिए इसका संकेत भारत हो सकता है। इसी को लेकर भारतीय अधिकारी और भारतीय पक्ष थोड़ा डिससैटिस्फाइड लग रहे थे और इसी सिलसिले में, इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल के उनके समकक्षी सुशील कोइराला से बात करने की बात आई है और उस बात के दौरान उन्होंने ये कहा है कि नेपाल की सुरक्षा के लिए भारत हर तरफ की कोशिश करेगा, जो बॉर्डर में जो अगर समस्या है तो हम वो संबोधन करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि नेपाल के जो विविध पक्ष हैं, विविध पॉलिटिकल पार्टीज है या विविध पक्ष जो मांग कर रहे हैं संघीयता के सवाल में, तो उनसे भी बृहत हिसाब से बात किया जाए।
ये बताइए वहाँ ग्राउंड सिचुएशन कैसी है, कल जहाँ हिंसा हुई थी और 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, आज वहाँ क्या हालात हैं?
नेपाल के जो पश्चिम भाग है कैलाली के टीकापुर, उसमें वो घटना हुई थी, जैसे आपने कहा 8 पुलिसकर्मी की जान जाने की खबर थी और एक बालक 2 वर्ष की बालक की भी जान गई है उसी दौरान, इस हिसाब से 9 पहुंच गई उस घटना में जान जाने की संख्या। और आज भी उस क्षेत्र में तनाव कायम है, सरकार ने उसको दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा किया है, कर्फ्यू जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ थारू सभासद के घर में, क्योंकि कल थारू ने आंदोलन किया था, थारू समुदाय ने, और उस आंदोलन के क्रम में पुलिसकर्मी मारे गए थे और उससे नाराज होकर कुछ स्थानीय वासी ने थारू सभासद के घर और एक रिजॉर्ट भी था और एक एफएम स्टेशन भी था उसमें तोड़फोड़ करने की खबर आई है। और इसी सिलसिला में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, नेपाल के पूर्वी भाग में रौतहट गौर में भी प्रदर्शन के क्रम में आज एक प्रदर्शनकारी का मृत्यु हो गया है पुलिस की फायरिंग से। अब जान जाने की संख्या की बात करें तो 16-17 हो गई है संख्या।
ये थे बीबीसी नेपाली सेवा के महेश आचार्य। भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद पर तनाव का खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान या भारत की ओर चली हर गोली सरहद के उस पार या उस पार रहने वालों के लिए जानलेवा साबित होती रही है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर स्थित नकियाल सेक्टर में बसे गांवों का हाल कुछ ऐसा ही है। अगस्त में तेज हुई गोलीबारी के कारण हजारों लोगों को वहां घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर होना पड़ा है। सुने बीबीसी संवाददाता शाज़ेब जिलानी की रिपोर्ट।
कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल नकियाल सेक्टर में एक दूर अफ्तादा गांव है। वहां पहुंचने के लिए इस्लामाबाद से निकलें तो गाड़ी में कहूटा और कोटली से होते हुए 6 घंटे लग जाते हैं। जहाँ रास्ता ख़त्म हो जाए वहाँ से फिर आप पैदल पहाड़ी रास्ते पर चलते हैं, मकई के खेतों से गुजरते, बहते पानी की नदियाँ फलांगते गांव तक पहुँचते हैं। कहने को कश्मीर जन्नत नज़ीर है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की फ़ौजों ने यहाँ की सरसब्ज पहाड़ियों को दुनिया का ख़तरनाक इलाका बना रखा है। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बसने वाले हज़ारों ख़ानदान मुसलसल खौफ के साए में रहते हैं, उन्हीं में जावेद अहमद शामिल हैं।
सर, ये इंडिया आर्मी का जो है ना गोला है, जिस वक्त जिस चाहे इंडिया आर्मी जो है ना गोलाबारी शुरू कर देती है, गोलाबारी की वजह से हमारे बच्चे स्कूल जो है नहीं जा सकते, काफ़ी अरसे से जो है स्कूल बंद है, घरों में जो है पढ़ाई वगैरह करते हैं।
इस वक्त हम जिस गांव में खड़े हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनकी तरह के मुझे काफ़ी लोग मिले हैं जो कह रहे हैं कि वो मुसलसल खौफ के साए में रहते हैं, इसके बावजूद कि भारत और पाकिस्तान में जंगबंदी बराए नाम है, लेकिन यहाँ के लोगों का बहुत बुरा हाल है, वो हर वक्त खौफ में रहते हैं। इस इलाके में भारतीय शेलिंग से पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है। یہاں آخری حملہ دو ہفتے پہلے ہی ہوا، جس میں ایک 4 سالہ بچی کی نوجوان ماں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا نشانہ بنی۔ ان کے شوہر طارق محمد پوچھتے ہیں کہ ایک بے گناہ اور نہتی خاتون کو مار کر کسی فوجی کو کیا ملا۔
ہم لوگ تو بیچ میں ہیں نا، چاہے پاکستان آرمی ہے چاہے انڈین آرمی ہے، ان کے بیچ میں ہم لوگ بے گناہ مار رہے ہیں، ہمارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
کچھ ایسی ہی بے بسی لائن آف کنٹرول کے اس پار بھی پائی جاتی ہے۔ پاکستانی فوج کے جوابی حملوں میں اس طرف بھی عام لوگ مرتے ہیں اور ان میں اکثریت نہتے کشمیری مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اگست میں بھارتی فوج کی مسلسل گولہ باری نے لائن آف کنٹرول کے کئی 100 خاندانوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، اور اب وہ اپنی مدد آپ کے تحت نکیال شہر کی قریبی پہاڑیوں پر آ بسے ہیں۔ ان مجبور خاندانوں کے لیے یہاں خیمے نہیں، خوراک نہیں، کوئی حکومتی امداد نہیں۔ انہی کے درمیان اپنے 4 بچوں کے ساتھ بیٹھی زلیخا خاتون پوچھتی ہیں کہ آخر ان کا قصور کیا ہے۔
نہ پانی لبے، نہ روٹی لبے، نہ مثلا دکانہ بند، گاڑیاں بند، کدھر جان، دہشت اندر پھیل دیا بچے ہی۔
تو بچوں کو آپ کیا بتاتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟
اپنی اوشنی رہنی بچے کیا بتائیے، ایسا غریبوں کے لیے کیا ہے؟ غریب جس طرح ہے پتھرا پر بیٹھے نے، بھوکے پانے، غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب روتے ہیں، پٹکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ حکومت جو کچھ پچھو دینی، اگر چمچے جڑے موٹے موٹے نا، وہ اپنے پیٹ بھری دا ہے، غریبوں ہی کچھ بھی نہیں دینے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کا نقصان دونوں ملکوں کے عوام کو ہوتا ہے، لیکن اس میں شاید سب سے زیادہ کنٹرول لائن پر بسنے والے کشمیری پستے ہیں، جن کی شاید کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ شازیب جیلانی، بی بی سی نیوز، لائن آف کنٹرول، نکیال سیکٹر۔
اور اب ایک نظر کھیل سماچاروں پر۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ شری لنکائی ٹیم کو کل دوسرے ٹیسٹ میچ میں 278 رن سے ہرانے کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم نے شکروار سے کولمبو میں ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے کمر کس لی ہے۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں 63 رن سے ہارنے والی بھارتی ٹیم اب سیریز میں 1-1 سے برابری پر ہے۔ بھارتی گیند بازوں نے شاندار پردرشن کر کپتان ویراٹ کوہلی کی 5 گیند بازوں کے ساتھ میدان میں اترنے کی رننیتی کو کامیاب بنایا، تو شیکھر دھون، مرلی وجے اور کے ایل راہل نے سلامی بلے باز کی بھومیکا بھلی بھاتی نبھائی۔ لیکن اب جبکہ شیکھر دھون اور مرلی وجے چوٹیل ہو کر ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں، تو ایسے میں ویراٹ کوہلی چیتیشور پجارا کو تیسرے ٹیسٹ میچ میں سلامی بلے باز کے طور پر کھلانا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اب کیول 1 ٹیسٹ میچ بچا ہے، اگر 3 یا 4 ٹیسٹ میچ بچے ہوتے تو نشچت روپ سے ہم وشیشگ سلامی بلے باز کے بارے میں سوچتے۔ میں مانتا ہوں کہ پجارا پہلے بھی اپنا کام بخوبی کر چکے ہیں اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ وہ اگلے میچ میں اچھا کھیلنے میں سکشم ہیں۔ کپتان ویراٹ کوہلی کے شبد۔ ویسے شری لنکا میں ہی موجود کرکٹ سمیکشک ایاز میمن کو لگتا ہے کہ ہربھجن سنگھ تیسرا ٹیسٹ میچ کھیل سکتے ہیں۔
ایک ہی پلیئر اس پورے اسکواڈ میں ایسے ہیں جنہوں نے شاید نراش کیا ہوگا، وہ ہے ہربھجن سنگھ، لیکن ہم نے انہیں دیکھا 1 گھنٹے تک گیند بازی کی میچ کے بعد پریکٹس کرتے ہوئے، تو شاید ٹیم مینجمنٹ میں یہ بھی ایک سوچ ہے کہ اگر سنہالا اسپورٹس کلب میں وکٹ ایسی ملے جہاں پر ٹرنرز یا ٹرنر ہو یا اسپن گیند بازوں کو چانس ملتا ہے، تو شاید ہربھجن کو ایک اور موقع مل سکتا ہے اس ٹول بینی کی جگہ۔
ادھر شطرنج کی بساط پر 5 بار کے وشو چیمپئن وشوناتھن آنند سنکوے فیلڈ کپ شطرنج چیمپئن شپ کے دوسرے دور میں روس کے الیگزینڈر گریشچوک سے ہار گئے، یہ ان کی لگاتار دوسری ہار ہے۔ اس سے پہلے وہ پہلے دور میں بھی امریکہ کے ہیکارو ناکامورا سے ہار گئے تھے۔ وہیں بیڈمنٹن کے کورٹ پر ویتنام اوپن میں آج بھارت کے آر ایم وی گروسائی دت نے تھائی لینڈ کے کھوسیت فریڈ پریڈب کو 23-21, 21 نوں سے ہرا کر دوسرے دور میں اپنی جگہ پکی کی۔ ادھر انگلینڈ نے ایشے سیریز میں جیت میں 460 رن بنا کر مہتوپورن بھومیکا نبھانے والے بلے باز جو روٹ کو آسٹریلیا کے خلاف آگامی 2020 میچ اور 5 میچوں کی ایک دیوسیہ سیریز کے لیے آرام دیا ہے۔
اور اب چلتے چلتے ایک نظر مکھ سماچاروں پر۔
बीबीसी समाचार। चीन के शेयर बाजार में आज भी भारी गिरावट देखी गई। चीन के शेयर बाजार में करीब 7% की गिरावट आज देखी गई। वहीं भारत में सेंसेक्स कल के मुकाबले थोड़ा संभलते हुए 290 अंक बढ़कर बंद हुआ। स्पेन और मोरक्को ने एक संयुक्त अभियान में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि कथित तौर पर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट में लोगों की भर्तियां करवाते थे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था देवाशीष कुमार ने। सभी साथियों के साथ रेहान फजल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।